नमस्कार भारत, तारीख 29 मार्च, दिन बुधवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द की ओबामा की जलवायु परिवर्तन नीति।
We have a very, very impressive group here to celebrate the start of a new era in American energy.
नाइजीरियाई छात्रों पर हमले की घटनाओं के बाद वहां से आकर पढ़ने वाले छात्र हैं दहशत में।
We the Africans, we are staying here. We are thinking that maybe they don't want to stay with us. Maybe because of we are from Africa, we are blacks.
उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जयपुर के नगर निगम की अवैध बूचड़ खानों पर लगाम लगाने की योजना। कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, अखबारों की समीक्षा भी होगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा प्रशासन के समय में जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए जारी की गई नीतियों को खत्म करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। राष्ट्रपति का कहना है कि इससे कोयले को लेकर विरोध और नौकरियां खत्म करने वाली नीति खत्म होंगी। इस आदेश के तहत पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल के दौरान लागू की गई करीब आधा दर्जन नीतियां रद्द कर दी गई हैं। इससे जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग जगत ने ट्रंप के इस आदेश की सराहना की है, लेकिन पर्यावरण सुरक्षा समूहों ने इसकी निंदा की है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में अधिकारियों ने शक्तिशाली तूफान डेबी से हुए नुकसान का जायजा लेना शुरू कर दिया है। फिलहाल केवल एक मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन तूफान से रास्तों के बंद होने के कारण इलाके के कई जगहों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार बोवन शहर युद्धग्रस्त इलाके की तरह दिख रहा है, लेकिन उन्हें खुशी है कि यहां किसी की मौत नहीं हुई है। क्वींसलैंड में होने वाली केले की खेती को लेकर भी लोगों में चिंता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने कहा है कि सरकार तूफान के बाद के हालातों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
The priority will be to support the recovery as the day progresses. We will get an understanding.
हमारी प्राथमिकता होगी इलाके में फिर से आम जनजीवन को बहाल करना। जैसे जैसे दिन बीतेगा, हमें तूफान से हुए नुकसान के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। हमने इससे निपटने के लिए काफी तैयारी की थी। हमारे पास मौजूद तकनीक से हम इस तरह के हादसों के बारे में पहले से ही जान सकते हैं, और ये अच्छी बात है। और हजारों आपातकाल कर्मचारी और सुरक्षा बल बुधवार से इन इलाकों में जाने के लिए तैयार हैं। ये थे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने औपचारिक तौर पर देश के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया शुरू करने वाले पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50 के तहत आधिकारिक नोटिस देने वाले इस पत्र को बुधवार को ब्रिटेन के राजदूत टिम बरो यूरोपीय संघ के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क को सौंपेंगे। इसके बाद टेरिजा मे कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगी, जहां वो सांसदों को ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया के शुरू होने के बारे में जानकारी देंगी। बीते साल देश में इस विषय पर जनमत संग्रह हुआ था, जिसमें 51.9% लोगों ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में वोट किया था। फुटबॉल की विश्व संस्था फीफा ने अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लायनेल मेसी के 4 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन पर 10,000 स्विस फ्रैंक यानी 6,50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। फीफा के अनुसार मेसी ने फीफा की अनुशासन संहिता की अवमानना की है। अनुशासनात्मक समिति का आरोप है कि बीते सप्ताह 2018 फीफा विश्व कप के लिए हुए एक मुकाबले में मेसी सहायक रेफरी पर चिल्लाए थे और उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। उन पर लगे इस प्रतिबंध से उनके फैन हताश हैं, जिन्हें लगता है कि इससे विश्व कप जीतने की देश की उम्मीदों पर रोक लग गई है।
Cuando terminó el partido no podía creer que Messi tuviera ese desagravio con el lineman.
मैं यकीन नहीं कर सकता कि खेल खत्म होने के बाद मेसी असिस्टेंट रेफरी पर चिल्लाए और कड़े शब्द कहे। उनके जैसा एक खिलाड़ी जो हर शनिवार रविवार बार्सिलोना में या स्पेन में जहां भी जाता है अपना मुंह बंद रखता है, उन्होंने रेफरी का अपमान किया। मैं उन्हें समझ नहीं पाता। मुझे लगता है कि वो बोलिविया जाना ही नहीं चाहते। ये थे बुइनोस एयर्स में फुटबॉल प्रेमी यूजेनियो एल्वारेस के शब्द। बीबीसी समाचार।
सुप्रभात। बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नजरिया पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से अलग है। ओबामा शासन के समय जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए जारी की गई नीतियों को खत्म करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके ट्रंप ने यह साबित कर दिया है। जहां ओबामा मानते थे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इस समस्या से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, ट्रंप का मानना है कि जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा और अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की इमारत में इस आदेश पर मोहर लगाते हुए ट्रंप ने कहा,
वी हैव ए वेरी वेरी इंप्रेसिव ग्रुप हियर टू सेलिब्रेट द स्टार्ट ऑफ ए न्यू एरा इन अमेरिकन एनर्जी।
डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आज एक बड़ा कदम उठा रहा हूं। मेरा प्रशासन कोयले के लिए हो रही लड़ाई पर पूर्ण विराम लगा रहा है। हमें स्वच्छ कोयला मिलेगा। आज के इस कार्यकारी आदेश के साथ मैं अमरीकी ऊर्जा पर लगे प्रतिबंधों, सरकारी रोक टोक और नौकरियां खत्म करने वाली नीतियों को खत्म करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। अपने चुनावी अभियान के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वो साल 2015 में हुए जलवायु परिवर्तन समझौते से अमेरिका को अलग कर देंगे। नए आदेश के तहत ओबामा की स्वच्छ ऊर्जा योजना को रद्द कर दिया गया है। वहीं उद्योग जगत ने ट्रंप के इस आदेश की सराहना की है, लेकिन पर्यावरण सुरक्षा समूहों ने इनकी निंदा की है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की पूर्व कार्यकारी सचिव क्रिस्टियाना फिगारेस ने बीबीसी से कहा कि वो ट्रंप अमरीकियों को बहला रहे हैं।
I'm sorry to say that I think this is a duplicitous move of the US administration because they
मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि ये धोखे से भरा कदम है, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि इससे नौकरियां वापस मिलेंगी। सच तो ये है कि कोयले के क्षेत्र में नई नौकरियां हैं ही नहीं। ये वो तकनीक है जिसका समय अब पूरा हो चुका है। बीते सदी में आर्थिक विकास का पहिया जरूर इसी से चलता था, लेकिन ये इस सदी की सच्चाई नहीं। क्रिस्टियाना फिगारेस के शब्द। कार्यक्रम में सीधे वॉशिंगटन का रुख करते हैं, जहां पर बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। ब्रजेश, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ये बताइए कि पहले ओबामा केयर को हटाने के लिए ट्रंप जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, सफल नहीं हो पाए, और अब जलवायु परिवर्तन समझौते को रद्द करना, ट्रंप का मकसद आखिरकार है क्या?
देखें, अगर जलवायु परिवर्तन के इस आदेश की बात करें तो ट्रंप अपने चुनाव अभियान के दिनों से ही कहते रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े कानून नौकरियां खत्म कर रहे हैं और अमरीकी संपन्नता के रास्ते में बेवजह की सरकारी रुकावट पैदा कर रहे हैं। और उन्होंने खास तौर से कोयले के खनन से जुड़ी नौकरियों का जिक्र किया था और कहा था कि कोयले के उत्पादन और इस्तेमाल से जुड़े सभी कानूनों को वो खत्म करेंगे और उन इलाकों में उन्हें काफी समर्थन हासिल हुआ था। तो ये एक तरह से एक चुनावी वादा पूरा कर...
माफ कीजिएगा ब्रजेश उपाध्याय, से हमारा संपर्क कट गया। लेकिन कुल मिलाकर मुद्दे की बात यह है कि पर्यावरण पर काम करने वाले लोग जो हैं इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, और बड़ी खबर यह है कि ओबामा केयर को हटाने के लिए ट्रंप जी तोड़ कोशिश करते रहे लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए, और अब उन्होंने जलवायु परिवर्तन के समझौते को रद्द कर दिया है। उनका कहना है कि इससे कोयला खनन के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें काफ़ी मदद मिलेगी। एक बार फिर से हमारे साथ ब्रजेश उपाध्याय में शामिल हो चुके हैं। ब्रजेश, आप जो बात कह रहे थे कि मुद्दे की बात यह है कि कोयले के क्षेत्र में खनन में जो नौकरियां पर संकट की बात हो रही थी, उसी को आप कह रहे थे। जी
जी हाँ, और उसमें काफी हद तक उनका जो चुनावी वादा था कि और जिस पर वो जीत कर आए थे कि अमेरिका में नौकरियां पैदा करेंगे और जो जिन नौकरियों की बदौलत अमेरिका इस मुकाम तक पहुंचा है उन नौकरियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। साथ ही ट्रंप शुरू से ही जलवायु परिवर्तन को एक वास्तविक खतरा मानने से इनकार करते रहे हैं और ये सोच रिपब्लिकन पार्टी में भी बहुत लोगों की है और बहुत लोगों का मानना है कि इस सोच को बढ़ावा देने में जो फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोलियम उद्योग की खासी भूमिका रही है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार अब ट्रंप जलवायु परिवर्तन में जो इंसानों की भूमिका को कुछ हद तक स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि सरकार चाहे तो लोगों की नौकरियां बचाते हुए जलवायु परिवर्तन पर रोक और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता दोनों ही हासिल कर सकती है। और उनकी दलील है कि ओबामा प्रशासन ने कामगारों के हक को दरकिनार करने वाली नीतियां बनाई थी। और उसी व्हाइट हाउस के अधिकारी का यह भी कहना था कि भारत और चीन जलवायु परिवर्तन से कहीं ज्यादा अहमियत अर्थव्यवस्था को देते हैं और अमेरिका उसी नीति पर चल रहा है।
बहुत संक्षेप में एक सवाल पूछ रहा हूं कि भारत ने भी ओबामा के नेतृत्व में पेरिस समझौते के लिए काफी मेहनत की थी और ओबामा ने काफी मेहनत करवाई थी, भारत चीन को शामिल करवाया था, तो क्या अमेरिका इन समझौतों से भी बाहर निकलेगा?
देखें, ट्रंप ने चुनावी मुहिम के दौरान ये कहा था कि ये समझौता अमेरिका के हक में नहीं है। अब उनका क्या रुख होगा ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी अमेरिकी तेल कंपनी एक्सॉन मोबिल ने एक पत्र लिखकर ट्रंप प्रशासन से कहा है कि अमेरिका को इस समझौते को बरकरार रखना चाहिए। और इस समझौते में आपको याद होगा कि शामिल देशों ने पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से दूर होने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने का वादा किया था, लेकिन अमेरिका का लेखा जोखा 2023 में लिया जाना है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या रुख अपनाते हैं इस पर।
जी ब्रजेश उपाध्याय, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने श्रोताओं से टेलीफोन लाइन एक बार टूटी उसके लिए हम माफी चाहते हैं।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31, 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7295, 9915, 11995 किलो हर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलो हर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। इस अंतर्राष्ट्रीय खबर के बाद भारत की खबरों का जिक्र करते हैं। राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नाइजीरिया से आकर पढ़ाई कर रहे छात्र इस समय दहशत में हैं। उन्हें डर है कि कहीं बाहर निकलते ही लोग उन पर हमला न कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि उन पर बिना किसी वजह के हमले हो चुके हैं। एक निजी विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे एक ऐसे ही छात्र से समीर आत्मज मिश्र ने बात की, सुनिए वो क्या कहते हैं उनकी इस रिपोर्ट में।
नजीब हसीम उमर भी पिछले 3 दिन से उसी तरह से खौफ में जी रहे हैं जैसे कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहकर पढ़ाई करने वाले हजारों नाइजीरियाई छात्र। कॉलेज के कैंपस में ही जब उनसे मुलाकात हुई तो उस समय विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी के कमरे में बैठे थे। कहने लगे,
वी द अफ्रीकन्स वी आर स्टेइंग हियर, वी आर थिंकिंग दैट मे बी दे डोंट वांट टू स्टे विद अस, मे बी बिकॉज ऑफ वी आर फ्रॉम अफ्रीका, वी आर ब्लैक्स।
हम अफ्रीकी यहाँ रह रहे हैं लेकिन इस समय हम डरे हुए हैं। ऐसा हमेशा ही होता है। हमें देखकर लोग सोचते होंगे कि इनके यहाँ तो दुनिया का सबसे ज्यादा काला धन होता होगा। शायद हमारे काले होने के कारण ही लोग हमसे नहीं मिलते। हालांकि चेन्नई में लोग हमसे भी ज्यादा काले हैं, फिर भी उन लोगों से लोग नफरत नहीं करते हैं। ये थे नजीब के शब्द। नजीब बताते हैं कि वो पिछले 4 साल से यहाँ रह रहे हैं और नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अफ्रीकी छात्रों के संगठन के वो अध्यक्ष भी हैं। वो देश के कई शहरों को देख चुके हैं। कहते हैं कि लगभग सभी शहरों का यही हाल है, कुछ जगह तो ज़्यादा ही है। वो कहते हैं कि जब एमटेक की पढ़ाई के लिए उनका यहाँ चयन हुआ तो वो बहुत खुश थे, लेकिन जब रहने लगे तो उनका अनुभव बहुत अच्छा नहीं रह गया।
आई थिंक मे बी दे गॉट ए रॉन्ग इम्प्रेशन अबाउट अस, बट आई डू नॉर्मली यूज्ड टू टेल देम दैट
हो सकता है कि हम लोगों के बारे में उन्हें सही जानकारी न हो, लेकिन जब वो हमारे साथ रह रहे हैं एक ही अपार्टमेंट में, तब भी वो हमसे दूरी बनाकर रहते हैं। मकान मालिक से कहते रहते हैं कि इन्हें मकान मत दो। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। हो सकता है कि कुछ एक अफ्रीकी अच्छे ना हो, लेकिन इससे ये तो नहीं कि आप सभी से नफरत करने लगें। आप सभी को एक ही तराजू पर नहीं तौल सकते। ये थे नजीब के शब्द। ये पूछे जाने पर कि अक्सर अफ्रीकी और खासतौर पर नाइजीरिया के लोगों पर ड्रग तस्करी या फिर अन्य ऐसे अवैध कामों में लगे रहने के आरोप लगते हैं, कई बार पुलिस पकड़ती भी है, तो आखिर ऐसा क्यों है? नजीब कहते हैं,
इन एवरीवेयर देयर इज ए बैड पीपल एंड देयर इज ए गुड पीपल, सो इफ लाइक ओनली,
ऐसा सिर्फ कुछ एक मामलों में होता है। ऐसे लोग महज 1% होंगे, लेकिन क्या इन 1% लोगों के कारण सभी अफ्रीकनों को आप पीट डालेंगे या फिर मार डालेंगे? आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने हमारे कुछ साथियों पर हमला किया और कोई भी बचाने नहीं आया। आखिर उन्होंने क्या किया था? बहरहाल ग्रेटर नोएडा में नजीब जैसे बहुत से लोग हिंसा के खिलाफ सड़कों पर भी उतरे, लेकिन सड़कों पर वो लोग भी उतरे जो अफ्रीकी छात्रों की हिंसा के शिकार हुए थे। समीर आत्मज मिश्र, BBC, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर।
नाइजीरियाई छात्रों पर हमले की घटनाओं के बाद वहां से यहां पर आकर पढ़ने वाले छात्र डर में जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जयपुर के नगर निगम ने अवैध बूचड़खानों पर लगाम लगाने की योजना बनाई है। नगर निगम जल्द ही इन बूचड़खानों पर कार्रवाई करेगा। नगर निगम के फैसलों से मांस बेचने वालों में घबराहट फैल गई है। मीट मर्चेंट संघ का कहना है कि इससे बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार होंगे। हिंदू धार्मिक संगठनों ने इस कार्रवाई की हिमायत की है। जयपुर से सुनिए नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
पड़ोस के उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान के जयपुर में बिना लाइसेंस चल रहे बूचड़खानों और मीट की दुकानों पर नगर निगम शिकंजा कसेगा। नगर निगम ने अपने अधिकारियों को कार्रवाई की योजना बनाने को कहा है। निगम ने कोई 1,000 मीट हाउसेज को जयपुर में लाइसेंस दे रखा है, लेकिन मीट व्यापार संघ का कहना है कि जयपुर में कोई 1,500 प्रतिष्ठान और दुकानें हैं जो मांस का व्यापार करते हैं। इनमें से अनेक ऐसे हैं जिनके पास या तो लाइसेंस नहीं है या फिर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जा सका है। निगम ने कोई 1 साल पहले आखिरी बार लाइसेंस स्वीकृत किए थे। जयपुर के मेयर अशोक लाहौटी ने मीडिया से कहा, इस कार्रवाई का उत्तर प्रदेश की कार्रवाई से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि मीट के गैरकानूनी व्यापार को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायक कैलाश चौधरी ने राज्य में यूपी की तर्ज पर कार्रवाई की मांग की है। निगम के इस कदम से मीट विक्रेताओं और दुकान होटल चलाने वालों में घबराहट फैल गई है। जमायत इस्लामी के निजामुद्दीन कहते हैं, सरकार को लाइसेंस के नवीनीकरण का मौका देना चाहिए था। मीट मर्चेंट संघ के अध्यक्ष पप्पू कुरेशी कहते हैं, सरकार की इस कार्रवाई से बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। मीट मर्चेंट संघ के मुताबिक इस कार्रवाई से कोई 3 लाख लोगों को रोजी रोटी मिल रही है। पप्पू कुरेशी कहते हैं कि वे अपने सदस्यों के साथ नगर निगम की कई मरतबा फेरी लगा चुके हैं, लेकिन लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं। वे कहते हैं यह नाइंसाफी है। इसके उलट कुछ संत महंतों ने इस कार्रवाई की हिमायत में 30 मार्च को बैठक बुलाई है। बहरहाल, नगर निगम की इस प्रस्तावित कार्रवाई से किसी को मुंह के जायके की चिंता है तो कोई अपनी रोजी रोटी को लेकर परेशान है। नारायण बारेठ, जयपुर, राजस्थान।
भारत प्रशासित कश्मीर में कल जिला बडगाम के एक इलाके में सुरक्षा बलों व चरमपंथियों के बीच झड़प में एक चरमपंथी को सुरक्षा बलों ने मारने का दावा किया। माजिद जहांगीर की रिपोर्ट सुनिए।
श्रीनगर से करीब 13 किलोमीटर दूर बडगाम के चाड़ूरा इलाके में मंगलवार को 10 घंटों तक सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच चलने वाली मुठभेड़ में लश्करी तैयबा के एक चरमपंथी को मारने का दावा किया गया है। इलाके में चरमपंथियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू होते ही स्थानीय लोग मुठभेड़ स्थल की तरफ बढ़ने लगे और सुरक्षा बलों पर पथराव किया और प्रदर्शन करने लगे। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई और पैलेट का इस्तेमाल करने के अलावा आंसू गैस के गोले भी दागे। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई में 16 प्रदर्शनकारी घायल हो गए, जिनमें से 3 युवकों को श्रीनगर के SMHS अस्पताल में मुर्दा हालत में लाया गया। अस्पताल में लाए गए 16 घायलों में से 15 लोग पैलेट और गोली लगने से घायल हो गए थे। SMHS अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर नजीर अहमद ने BBC को बताया,
टोटल हमने आज चाड़ोरा से 16 पेशेंट को रिसीव किया। उनमें 3 पेशेंट थे जो ब्रॉड डेड थे, मोस्टली बुलेट इंजरी थी। एक पेशेंट था जिसको शेल लगा था।
तीनों युवकों की मौत के बाद चाड़ूरा इलाके में लोगों ने आजादी के हक में नारे लगाए, जिस समय जाहिद नामी एक युवक का शव एम्बुलेंस में परिवार वाले घर ले जा रहे थे तो श्रीनगर के जहांगीर चौक में पुलिस ने एम्बुलेंस को रोका और परिवार वालों को शव आगे ले जाने नहीं दिया, जिसका एक वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वायरल हो गया है। सुनिए मारे गए युवक के साथ परिवार का एक सदस्य वीडियो में क्या कह रहे हैं।
भाई मेरा शहीद हो गया है, आप देख सकते हैं कश्मीर में कितना कर रहा है।
अलगावादियों ने चढ़ोरा में 3 युवकों की मौत के खिलाफ आज कश्मीर बंद बुलाया है। वहीं आज राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चाड़ूरा में मारे गए 3 युवकों की मौत पर अफसोस जताते हुए कहा है कि बच्चों को एनकाउंटर साइट्स पर नहीं आना चाहिए।
जब भी कहीं एनकाउंटर होता है कोशिश करें अपने बच्चों को इस एनकाउंटर से दूर रखने की और पत्थरबाजी ना करें, क्योंकि इस वक्त दोनों तरफ से बंदूक चल रही होती है, वहां से मिलिट्री चला रहा हो तो यहां से सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस, तो ऐसे में अपने बच्चों को इन साइट्स पे जाने देना, मैं समझती हूं कि ये बहुत खतरे से खाली नहीं होता है।
चाड़ूरा में मंगलवार को प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़पों में CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 दर्जन से ज्यादा जवान घायल बताए गए हैं। CRPF के DIG डॉक्टर अजय कुमार ने BBC को बताया कि ये ऑपरेशन बहुत ही सख्त था।
जो अभी तक की खबर है उस हिसाब से 43 जवान इंजर्ड हुए हैं, वेरियस रैंक के, डिफरेंट रैंक के पुलिस के जो तमाम लोग लगे हुए थे उनमें से 20 लोकल पुलिस के भी इंजर्ड हुए हैं। जो स्टोन पिल्टर्स जैसे जैसे सुबह देर होता गया चारों तरफ से इतनी बुरी तरह से स्टोन पेल्टिंग करते रहे कि हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया था कि हम उस पर कंसंट्रेट करें या इनको संभालें।
घाटी में चरमपंथियों और सुरक्षा बलों के बीच होने वाली झड़पों के दौरान स्थानीय लोगों का एनकाउंटर साइट्स पर जमा होना और प्रदर्शन करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा मसला बनकर उभरा है। माजिद जहांगीर, BBC, श्रीनगर।
और कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है अखबारों के पन्ने पलटने का। मानसी, आप अखबार पढ़ चुकी हैं, पन्ने पलट चुकी हैं और मेरे सामने जन सकता है जिसकी जो लीड खबर है वो यही है कि पत्थरबाजी के दौरान 3 की मौत, क्या कहता है अखबार?
इसी से संबंधित मैं आपको एक खबर बताती हूँ जो कि इसी के नीचे छपी है कि किया जा सकता है पैलेट गन का दोबारा इस्तेमाल। जनसत्ता अखबार ने पहले पन्ने पर जो खबर छापी है उसमें कहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा है कि कश्मीर घाटी में सुरक्षा बल दंगाइयों को खदेड़ने के लिए विभिन्न उपायों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे गोले, ग्रेनेड, आंसू गैस, और अगर दंगाइयों को खदेड़ने में ये उपाय नाकाफी साबित होते हैं तो पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको याद होगा कि हाल में पैलेट गन को लेकर काफी
लंबा चौड़ा विवाद चला है। जी,
इधर अंग्रेजी के अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि कोर्ट रूम में यानी अदालत के परिसर और अदालत के कमरों में अब कैमरे लगाए जाएंगे और ऑडियो रिकॉर्डिंग संभव हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज आदर्श के गोयल और उदय यू ललित ने देश के 24 हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि प्रत्येक राज्य के कम से कम 2 जिलों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोर्ट रूम और परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और इसके लिए उन्हें 3 महीने का समय दिया गया है। अब दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर बता दूं, हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के अनुसार शिक्षा विभाग ने एक चिट्ठी जारी की है और कहा है कि दिल्ली सरकार की जमीन पर बने 300 निजी स्कूल अप्रैल से शुरू होने वाले नए साल में अपनी फीस नहीं बढ़ाएंगे। इस चिट्ठी के अनुसार अन्य 1400 निजी स्कूल फीस को 10% से अधिक नहीं बढ़ा सकते और साथ इसके लिए 7वें वेतन आयोग के लागू होने को कारण नहीं बता सकते। एक और खबर गर्मी से संबंधित, इधर चुनावी पारा खत्म हुआ नहीं, मौसम का पारा चढ़ने लगा है। दैनिक पायनियर की पहले पन्ने पर छपी एक खबर के अनुसार गर्मी लोगों को अब परेशान करने लगी है। राजस्थान के बाड़मेर और गुजरात के अहमदाबाद में पारा 40 के ऊपर पहुंच गया है तो दिल्ली मुंबई में पारा 37 के ऊपर पहुंचा है। अखबार ने पूछा है कि क्या इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी।
और एक खबर जनसत्ता में ही है कि एंटी रोमियो अभियान, भाई बहन को पकड़ा, घूस लेकर छोड़ा। और ये जो बात है ये रामपुर की है। एक चलते चलते कार्टून पढ़ना चाहता हूँ इसी जनसत्ता का है कि अमित शाह का चैम्बर है, उसके सामने बात हो रही है और एमसीडी चुनावों का जिक्र हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई हमें भाषण में करना ही क्या है कि भाषणों में जो जो जहां जहां अखिलेश का नाम था वहां वहां पर सिर्फ कट एंड पेस्ट करके केजरीवाल का नाम लगा दो, बाकी भाषण जो है हमारे वैसे के वैसे ही रहेंगे। मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया। मल्टीप्लेक्स के आने के बाद से दिल्ली के सभी सिंगल स्क्रीन सिनेमा एक एक करके बंद हो रहे हैं। 84 साल पुराना दिल्ली का ऐतिहासिक रीगल सिनेमा अब इसी कड़ी में नया नाम है। 31 मार्च को इसकी टिकट खिड़की आखिरी बार खुलेगी और फिर ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। कई फिल्मी सितारों और फिल्म देखने वालों की यादें रीगल से जुड़ी हैं। बीबीसी संवाददाता वैभव दीवान की विशेष रिपोर्ट।
पंखों का ये शोर और ये जो आवाज में गूंज है ये आ रही है आपको रीगल सिनेमा हॉल से, दिल्ली के कनॉट प्लेस की एक ऐसी जगह जहां पर लोगों से बोल दिया जाए रीगल कहाँ है, आपको एक मिनट में आंसर जवाब पता लग जाएगी कहां पर है रीगल। मैं इस समय इस थिएटर में हूं जो कि 31 मार्च को बंद होने वाला है। 1932 से चल रहा है ये थिएटर, कमाल का थिएटर है। आखिरी फिल्म यहां पर फिल्लौरी लगी है जिसको देखने बहुत ही कम लोग आए हैं। क्या कारण है, किस वजह से ये बंद हो रहा है?
इसका रीजन ये है कि आपको पता होगा कनॉट प्लेस में 2-3 बिल्डिंग की छत गिरी है। छत गिरने के बाद में NDMC ने सब पुरानी बिल्डिंग को नोटिस भेजा, हमें भी नोटिस आया, हमने टाइम भी मांगा, हमें टाइम भी दिया। उन्होंने कहा बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल फिटनेस सर्टिफिकेट दीजिएगा, जो हम नहीं दे पाए क्योंकि कोई भी आर्किटेक्ट हमें सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ओल्ड बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, रिस्क है। तो इस रिस्क को देखते हुए हमने डिसीजन किया कि सिनेमा हॉल को बंद किया जाए।
तो अब क्या होने वाला है, आगे क्या होगा?
यहाँ मल्टीप्लेक्स की प्लान है,
मल्टीप्लेक्स। ये थे रीगल सिनेमा के फाइनेंस मैनेजर AS वर्मा। मगर इस थिएटर से जुड़ी कई लोगों की यादें सुनते हैं। शुक्ला साहब, कमाल की मुझे बिल्कुल रीगल मुझे आपकी बिल्कुल
रियल 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 और रियल दोनों।
रीगल 31 तारीख को बंद होने वाला है, क्या यादें हैं आपकी रीगल के साथ?
बहुत यादें जुड़ी है जी, हमारे तो यहाँ पे आधी जिंदगी बीत गई। 35-70 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए।
करते क्या है आप यहाँ पे?
मैं वहाँ कंटिन्यू काम करता हूँ, ऑलराउंडर हूँ मैं, सारा तरफ वहाँ टिकट भी फाड़ू, लाइन भी लगवाऊँ, वहाँ गेट पे भी बैठा हूँ, मालकों को चाय पानी भी पिलाऊँ, सारा काम मेरा ही है यहाँ का।
कमाल है, मुझे हो तो शुक्ला जी जैसी हो। रीगल सिनेमा के अकाउंटेंट AS वर्मा इस थिएटर में पिछले 40 साल से, क्या कहा उन्होंने?
रीगल थिएटर जो है वो दिल्ली का सबसे पहला सिनेमा हॉल है, प्रीमियर थिएटर बोलते हैं उसको, और दिल्ली से इसकी बहुत बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। पहला सिनेमा हॉल था, बड़ी बड़ी हाई डिग्निटी यहाँ आती थी, सिलेक्टेड मूवीज लगती थी, और उस टाइम का पहला सिनेमा है और बहुत अच्छा सिनेमा हॉल में उसका नाम था।
अच्छा, मैंने सुना राज कपूर साहब का ये लकी सिनेमा हॉल माना जाता था, क्यों?
राज कपूर की सारी पिक्चर यहाँ रिलीज होती थी और राज कपूर के जो पहले यहाँ मालिक थे उनसे ताल्लुकात भी फैमिली टाइप के थे, इसलिए जो पिक्चर रिलीज हुई वो रीगल में जरूर आई है।
और जब उनकी फिल्म रिलीज होती थी तो कुछ खास होता था?
खास क्या, कई पिक्चर में यहाँ प्रीमियर होता था, प्रीमियर में राज कपूर और उसकी सारी टीम आती थी, आकर के वो स्टेज पर हवन कराते थे, जिस दिन पिक्चर रिलीज होती थी उसी दिन वो आते थे 9:30-10 बजे करीब, यहाँ हवन कराते थे, एक रील चलवाते थे और हॉल को बहुत अच्छी तरह से फूलों से सजाया जाता था, ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है।
और कैंटीन की खास बात थी जो यहाँ खाने की चीज़ें होती थी, शुक्ला जी ने बताया और मेरे मुंह में पानी आ गया।
पहले हमारे समोसे बनते थे, देखिए आपको, और बहुत मशहूर समोसे, सामी कबाब हमारे होता था, कटलेट होती थी, ब्रेड पकौड़ा होता था, आलू बोंडा होता था, हमारा अपना बना हुआ।
अब रीगल के इन 660 सीटों के सिनेमा हॉल को हटाकर यहाँ पर मल्टीप्लेक्स आ जाएगा, शायद 4 स्क्रीन्स होंगी। कनॉट प्लेस का रीगल सिनेमा हमेशा लोगों को याद रहेगा। वैभव दीवान, BBC हिंदी, रीगल सिनेमा कनॉट प्लेस से।
वैभव दीवान के साथ हमने रीगल सिनेमा को देख लिया जो कि बंद होने वाला है, और अब वैभव दीवान से ही आज खेल की खबरें सुनते हैं।
BBC खेल समाचार के साथ मैं हूं वैभव दीवान। क्रिकेट में कल ऑस्ट्रेलिया को धर्मशाला में टेस्ट मैच हराकर भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली, जिसके साथ ही भारत ने सालाना कट ऑफ तारीख 1 अप्रैल को टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 का ताज बरकरार रखने पर ICC टेस्ट चैंपियनशिप गदा अपने पास रखी और $10,00,000 का नकद पुरस्कार भी जीता। मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने अपनी खुशी जाहिर की।
बहुत प्राउड मोमेंट है, ऑब्वियसली पूरा सीजन अच्छे क्रिकेट खेलना, स्पेशली होम सीजन को ऐसे डोमिनेट करना बहुत ज़रूरी था एक यंग साइड के लिए, अपना कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए, फ्यूचर की टीम बनाने के लिए, कि ऐसी परफॉर्मेंसेज कंसिस्टेंटली हम करें, और वो हमने अचीव किया पूरे सीज़न में। तो आई थिंक ये पूरा टीम एफर्ट है, आई वुड से कि पूरा स्क्वाड एफर्ट है, जिस टीम एफर्ट में, क्योंकि वो सब लोगों को इन्वॉल्व करता है, तो बहुत बहुत क्रेडिट सब लोगों को जाना चाहिए पूरी स्क्वाड में।
भारतीय कप्तान विराट कोहली का कंधे की चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग IPL के शुरुआती चरण में खेलना संदिग्ध है। कोहली चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में भी नहीं खेल पाए थे। अब बात बैडमिंटन की। दिल्ली में शुरू हो गई है इंडियन ओपन सीरीज, जहां राउंड 1 में आज साइना नेहवाल और PV सिंधु के मुकाबले होंगे। कैसा है इस टूर्नामेंट में भारतीय दल और आज के मैच पर क्या है कहना एशियन चैंपियन दिनेश खन्ना का, सुनिए।
भारतीय दल अच्छा है काफी, और काफी संख्या में है, जैसे कि मेन सिंगल्स में हमारे 6 खिलाड़ी हैं, 5 पहले थे और 1 क्वालिफाई करके आए हैं। विमेन सिंगल्स में तो 12 खिलाड़ी खेलेंगे। जहां तक PV सिंधु का प्रश्न है, वो तो घर का ही मामला है, क्योंकि अरुंधति पंडवाने जो कि भारत के लिए खेल चुकी हैं और एक यूबर कप की भी मेंबर रही हैं, उनसे उनका मुकाबला होगा। जो जिस तरह की फॉर्म में PV सिंधु चल रही हैं, मेरे को कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं समझता कि उनको आनी चाहिए। साइना नेहवाल का मुकाबला चिया सिन ली, एक उभरती हुई खिलाड़ी हैं चाइनीज ताइपाई की, काफ़ी युवा खिलाड़ी हैं, 20 वर्षीय, तो उनसे उनका मुकाबला होगा। मेरे ज़्यादा इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए साइना को उनके सामने, पर मुकाबला जो चाइनीज ताइपाई की सभी खिलाड़ी हैं वो अच्छा उनका प्रदर्शन रहता है, तो अच्छा एक उनको मेरे ख्याल में वार्म अप मैच मिलेगा साइना नेहवाल को।
तो PV सिंधु और साइना नेहवाल के मुकाबलों पर रहेगी BBC हिंदी की नजर। मिलेंगे खेल समाचार के साथ आज शाम BBC दिन भर में। नमस्कार।
और कार्यक्रम में इससे पहले कि आपसे विदा ले, मुख्य समाचार सुनने का वक्त आ गया है।
BBC समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा के कार्यकाल के दौरान लागू हुई जलवायु परिवर्तन नीति रोकने के लिए जारी की गई, माफ़ कीजिएगा, ओबामा के कार्यकाल के दौरान जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए जारी की गई नीतियों को खत्म करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में अधिकारियों ने शक्तिशाली तूफान डेबी से हुए नुकसान का जायजा लेना शुरू कर दिया है। फिलहाल एक मौत की पुष्टि हो गई है। फुटबॉल की विश्व संस्था फीफा ने अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लायनेल मेसी के 4 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। BBC समाचार।
तो BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरूठिया, शाम
7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें और bbchindi.com के पन्ने पर आते रहें। नमस्कार।